मरते समय चार तकलीफें होती है। एक तो मृत्यु समय पीड़ा की तकलीफ, जैसे एलिजाबेथ का बताया, दूसरे कईयों का। अपने साधक को मरते समय शारीरिक पीड़ा की तकलीफ ना हो, इसलिए सत्संग में सुनाया जाता है कि शरीर की बीमारी आपकी बीमारी नहीं, आप शरीर नहीं हो, शरीर मरने के बाद भी आप रहते हो। तो तकलीफ के साथ जुड़ो मत, उसके साक्षी हो जाओ। जैसे मैं बताता हूं कई बार, वृंदावन, मथुरा से वृंदावन के तरफ फियाट गाड़ी जा रही थी और धड़ाक से टैंकर का टक्कर लगी, दो बच्चे मर गए, पति मर गया, भाई को फ्रैक्चर हुआ। माई आगरा हॉस्पिटल में भर्ती है, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, दो बच्चे मर गए और स्वयं को फ्रैक्चर तीन हुए हैं, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, बेड रेस्ट पर है। एक बच्चा जो का त्यों है, वो बच्चा किसी पड़ोस में झोपड़पट्टी की माई मर गई थी, उस बच्चे को गोद लिया था, वो गोद में ही बच्चा था, नन्ना था, उसको कुछ चोट नहीं आई। उस माई से आगरा हॉस्पिटल में मिलने लोग जाते जाते तो मुंह बनाकर रोने का, लेकिन वो माई से मिलकर आते तो प्रसन्न होके आते। माई को जब एक साल पूरा हुआ, परसों उसको छुट्टी मिलने वाली, तो विदेश का कोई उनका रिश्तेदार मिलने गया कि तुम्हारे साथ तो अन्याय हो गया, दो बेटे मर गए, पति मर गया, गाड़ी नाश हो गई, ड्राइवर मर गया, तुमको एक साल हो रहा है अस्पताल पड़ी हो। बोले इसमें क्या बात है, ये तो जो होनी थी हुई, लेकिन पति की मृत्यु के समय भी मैंने हौसला संभाला कि मृत्यु शरीर की है। बेटों को भी कहा, बेटे तुम शरीर नहीं हो, तुम हमारा आत्मा हो, चैतन्य हो, उनकी यात्रा दिव्य की, और मेरे को पीड़ा हुई ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, शरीर को पीड़ा हुई। मेरे को कई लोग आते हैं सांत्वना देने के लिए, मुंह बनाकर रोने जैसा, मैं उन्हें सत्संग सुनाकर खुश करके भेजती हूँ। ये सत्संग का प्रभाव कितना बड़ा भारी है, कितनी महान पीड़ा के समय भी हम समता में रहे और आत्ममस्ती में रहे। जब इतनी भयंकर पीड़ा भी उसको पीड़ित नहीं कर सकी, तो मृत्यु की पीड़ा इतनी भयंकर नहीं होती जितनी उस माई को जीवन में आई। दो बच्चे उस समय मर जाए, पति मर जाए और फ्रैक्चर हो जाए, फिर मृत्यु, ऐसा नहीं होता है। सत्संग के द्वारा इतनी भयंकर पीड़ा को भी पचा लेते सत्संग। मेरे गुरु जी के शरीर को हृदय का दम्मा चल पड़ा था, ऐसा कि एक मिनट बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, ऐसी हालत थी आखिरी दिनों। लेकिन बता रहे थे कि देख, उपदेश दे रहे थे, देख शरीर का प्रारंभ। तो मेरे शिष्यों को, साधकों को मरते समय पीड़ा अपने में आरोपित नहीं करनी है। जैसे औरंगजेब को मरते समय एक तो शरीर की पीड़ा सताती, दूसरी पीड़ा सताती जिससे आपने बुरा सलूक किया है। उनमें बुरे सलूकों में सबसे ज्यादा जिसे बुरा किया, वो अंत में मेजर मेजर पीड़ा आती है। जैसे दाराशिकों को सताया, अपने भाई को, अपने पिता को जेल में डाला औरंगजेब ने, और शरमद नाम के फकीर की हत्या करवा दी। ये तीन पीड़ाएं औरंगजेब के जीवन में मरते समय बहुत कुछ उनको तपाती रही। तो एक होती शारीरिक पीड़ा, दूसरी होती मन की पीड़ा, दुष्कृत की उसकी पीड़ा सताती। तो मेरे सत्संगी दुष्कृत इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते जितना निगुरे लोग करेंगे। इसलिए मेरे शिष्यों को मरते समय अपने दुष्कृत सताएं और दुष्कृत की सताएं पीड़ा उन साथ में ले जाए, ऐसी संभावना कम हो जाती। मैं दृष्टांत देता हूं, मेरी नानी मर गई थी, शमशान में ले गए थे, लेकिन शमशान में हिलचाल हुई तो रस्सियां वस्सियां खोली और पैदल घर आई। फिर 39 साल जी मेरी नानी, मैं झूठ बोलूं तो तुम्हारी नानी मरे बस। हम 8-10 साल के थे, 12 साल के, तभी भी नानी से पूछते थे, नानी तुम मर गई थी, फिर क्या हुआ? तो नानी ने तो उसी समय बताया कि क्या पता क्या हुआ, लेकिन मैंने देखा कि जमदूत ये हो, तो मैंने कहा मुआ मेरे को इधर कैसे ले आए, मैं तो नामदान लिया है, संत का नाम भी बता दिया साईं देव राम का, यहाँ तो पापियों को मैं, अरे तुम्हारा हेमी बाई नाम है ना, हाँ बोले हेमी बाई है, लेकिन आगे पीछे दूसरा भी नाम देखो ना, हेमी बाई की बाई, हेमी बाई के नाम की माई बस वही उस एक ही होती है क्या, हमारे गांव में दूसरी भी तो हेमी बाईया है, कौन सी हेमी बाई, तो देखो मरते समय भी हौसला बुलंद है नानी का, यमपुरी में यमदूतों को डांटती, बोले हेमी बाई पोमलो, बोले नहीं नहीं तो तुम्हारे पति का नाम बोलो ना, बोले पोपे है तुम बोलो, मैं हाँ बोलूंगी, तो हेमी बाई प्रीतम दास, बोले नहीं हेमी बाई पुरुषोत्तम, बोले नहीं तुम आई बोल देना, बोले हम सिंधी लोग नहीं बोलते पति का नाम, तुम बोलता जाना, हेमी बाई प्रेम कुमार, बोले नहीं कुमार हटा दे पीछे चंद लगा दे, हेमी बाई प्रेमचंद, बोले हाँ बेटे हाँ तेरा भला हो, अरे हेमी बाई प्रेमचंद है, हेमी बाई पोहुमल को लाना था, जाओ जल्दी छोड़ के आओ, तो फिर मेरे को इसी शरीर में छोड़ गए, तो मैं उठ के चल के आई, 39 साल जी मेरी नानी, ये कपोल कल्पित बात मानोगे तो आपको पाप लगेगा, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, उस जमाने के साक्षी मैं स्वयं साक्षी हूं, मामा तो मर गए, माँ भी मेरी मर गई, मौसी भी मर गई, वो नानी लंबी उम्र तक जी, 70 साल की तो मेरी मौसी थी तब भी नानी जी रही थी, तो 90-100 पार करा होगा, 100 से भी ज्यादा क्या होगा, मुझे पता नहीं कि मुझे सत्संग करना पड़ता, नहीं तो मैं बायोडाटा लिख के रखता, नारायण हरि नारायण हरि, तो ये चार पीड़ाओं में से नानी को नहीं हुई पीड़ा, वो तो पीड़ा होती तो चुपचाप बिचारी सुनसान में, तो तीसरी पीड़ा क्या होती है, जिस वस्तुओं में व्यक्तियों में आपकी आसक्ति है, बेटी का क्या होगा, बेटी ने सीए कर लेता हो, कर लिया होता फिर मैं जाती, बेटी की शादी हो जाती फिर मैं जाती, ऐसा ऐसा चिंता नहीं होती मेरे भक्तों को, जो काम अधूरा रह गया ना तो उसके प्रति होता है क्या होगा, अथवा जिसमें वासना रह जाती, रमण महर्षि के आश्रम में महर्षि जब सत्संग करते तो एक गाय जो पाली हुई आती और भर भर आंसू रोती, महर्षि उसे स्नेह करते चारा वारा खिलाते, एक दिन पूछा गया कि गाय को आप स्नेह करते और ये बीसों आंसू रोती है, बोली अगले जन्म कई महान साधक थी, किसी कारण गाय में ममता चली गई, गाय बनी बिचारी, अब इसका सदगति होगी, आज भी रमण महर्षि के आश्रम में उस गाय की समाधि है, तो मरते समय जिसका चिंतन होता है उस चोले में जीव को जाना पड़ता है, तो एक मरते समय पीड़ा, दूसरा मरते समय किए हुए दूषित कर्मों का तपाना, तीसरा मरते समय जिसकी प्रीति चिंतन आसक्ति उधर भटकना, चौथा मरकर कहां जाएंगे ये पता नहीं उसका भय, ये चार चीजें सामान्य आदमी को सताती है, भक्त को भी सताती है, लेकिन जिसने दीक्षा ली और ब्रह्म ज्ञानी गुरु का शिष्य बन गया उसके आगे चार बातें छू हो जाती है और मुक्त आत्मा बन जाता है, महान आत्मा बन जाता है, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, कितना बड़ा फायदा है।